साची करनी कि जो नित नीत दोहे जहाने सुख की नीत। मनुष्य जन्म लेकर मैंने कितनी लंबी सोच अपनानी होती है, ये वाणी उसकी आपको याद दिलानी। साची करनी की जो नित नीत दोहे जहां में सुख की रीत। एक ये जहान है जिसमें आज मैं जी रहा हूं, और इस शरीर की जब मौत होगी तो मेरा दूसरा जहान शुरू होगा। तो मैंने इस जन्म की भी सोचनी है, अगले जन्म की भी सोचनी। ये काम पशु पक्षी नहीं करते, ये प्रभु अपनी वाणी द्वारा हमको याद दिला रहे हैं। मनुष्य जन्म इतनी लापरवाही से व्यतीत करने वाली चीज नहीं, ये पूरे संसार में बेशकीमती चीज है। मनुष्य देह से ज्यादा अन्य कोई कीमती वस्तु संसार में हो ही नहीं सकती। तो ऐसा कम कीमती शरीर मिलने के पश्चात मैं संसारियों की नकल करके मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए जैसे चाहो जीता रहा। तो ये मनुष्य जन्म जो इसकी कीमत वास्तव में है, वो कीमत यदि मैं इसकी अदा नहीं करता तो मैं निरर्थक ही ये जन्म पशुओं की तरह व्यतीत करके संसार से विदा हो जाता। इसीलिए जो ये वाणी है वो करने की बात नहीं कर रही है, साची करने की बात कर रही है। नित नीत का मतलब निरंतर, जब से तेरी बुद्धि ने होश संभाला है तब से तुझको इस बात का होश होना चाहिए कि मैं संसार में आया हूं तो मैंने किस प्रकार के कर्म करने हैं। क्या केवल मैं दूसरों की नकल करके ही करता रहूं? सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं, क्या यही जीवन श्रेष्ठ है? यदि यही जीवन श्रेष्ठ है तो सारी दुनिया राजाओं के जीवन को क्यों नहीं याद करती? उनके आगे नतमस्तक क्यों नहीं होता? सारी दुनिया देख लीजिए, जब याद करती है तो ऋषियों को याद करती है, अवतारों को याद करती है, पैगंबरों को याद करती है, गुरुओं को याद करती है। श्रद्धा से हम उनकी ही याद करते हैं, संसारियों की याद नहीं करते। क्यों याद करते हैं? क्योंकि जिसने गुरु को याद किया है, जिसने सत्पुरुष को याद किया है, वो इस जन्म को भी सुधार लेता है और अगले जन्म की भी तैयारी कर लेता है। उसको पता होता है कि मैंने अगले जन्म में क्या करना है। जहां तक मैंने इस जन्म में यात्रा पूरी कर ली, अब अगले जन्म में मैंने वहां से अपनी यात्रा आगे की स्टार्ट करनी है और मंजिल तक पहुंचना है जिसको ईश्वर प्राप्ति कर। इसीलिए दोहे जहाने सुख की रीत, तो ये वो सुख है जिसकी बारे में बात कर रही है, जिसको हम आत्म सुख को कहते हैं, जिस सुख को प्राप्त करके संसार का दुख हमेशा हमेशा के लिए इस मनुष्य के जीवन से समाप्त हो। उस सुख को प्राप्त करके मनुष्य तृप्त होता है और ईश्वर के साथ एक। इसलिए जितनी भी अज्ञात विद्या है ये उस विज्ञान को हमको समझाती है जो इस जन्म में भी काम आता है और इस जन्म के बाद जो नेक्स्ट अगला जन्म है जो कि तुरंत ही मुझको मिल जाता है। महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी एक चीज बताइए, मनुष्य की जब वर्तमान देह का अंत होता है तो नई देह जब मिलती है तो बीच में कोई टाइम गैप होता है या तुरंत ही मिल जाती है? तो महाराज जी के सामने उस समय एक जोक चल रही थी, उस जोक का एग्जाम्पल लेकर बताया मैंने, जिस प्रकार ये जोक चल रही है जब ये अगला मुंह जमा लेती है तब पूछ उठाती है, उसी प्रकार जब जीव का नया शरीर निर्धारित हो जाता है तब पुरानी देह का वो त्याग करता है। मेरे बारे में सत्य ये है, तो इस सत्य को क्या संसार पाएगा? बता भी देगा आपको विश्वास ही नहीं हो। इस सत्य को शास्त्र ही बताते हैं, सत्पुरुष ही बताते हैं, उनकी वाणी ही बताते हैं, क्योंकि सत्पुरुष की बात पर हमको भरोसा होता है, विश्वास होता है, क्योंकि वो लालची नहीं है। सत्पुरुष वो चीज है जिसके अंदर 1% भी किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। तभी वो हमारे बारे में सोचेगा, हमारे कल्याण की ही सोचेगा, उसी के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसीलिए सत्पुरुष की बात साधारण नहीं होती है, बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स का एक फार्मूला होता है, उस एक फार्मूले को अप्लाई करके आप पूरी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, उसी प्रकार सत्पुरुष की एक बात को धारण करके आप पूरा अपना जन्म सुधार सकते। तो वाणी कह रही है, स्वभाव स्वरूप कर्म का बिंद, त्रैगुण माया का असली पिंड। स्वभाव स्वरूप कर्म का बिंद, त्रैगुण माया का असली पिंड। ये जो स्वभाव है हमारा, वो कहते हैं ये कर्म का बिंद है। बिंद कहते हैं बीज, जिससे आगे की जनरेशन पैदा होती है, आगे की जनरेशन बढ़ती है। तो कर्म का बिंद का मतलब था, कर्म हम जो कुछ भी करेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा स्वभाव डिसाइड करेगा। तो स्वभाव जो है वो कर्म का बिंद है, कर्म का जेनेटिक पॉइंट है, कर्म का बीज है। तो मैं वर्तमान जन्म में क्या कर्म करूंगा, ये मेरा स्वभाव डिसाइड करता है। इसीलिए जब अध्यात्म विद्या को पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले आपको एक बात सिखाई जाती है कि तूने अपने स्वभाव को पहचानना है और तू जीवन में क्या बनना चाहता है उसके अनुसार तुझको अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, क्योंकि उस स्वभाव के अनुसार ही तेरे मन के अंदर संकल्प पैदा होंगे, बुद्धि का निश्चय होगा जो तुझको गाइड करेगा कि तुम्हें क्या करना है। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो सारे कर्म का स्रोत स्वभाव है, तो मैं स्वभाव के प्रति लापरवाह कैसे हो सकता? अब विचार करिए, इस स्वभाव के बारे में संसार में कोई विद्या अवेलेबल है? जो भी हमारी सांसारिक विद्या है, पैसा कमाने की विद्या है, वहां कहीं ही इस स्वभाव के विज्ञान की बात आती है? कहीं नहीं आती। इसलिए ये विद्या शास्त्र से ही सीखनी पड़ती है, सतगुरु से ही सीखनी पड़ती है। वो कहते हैं, जैसा कर्म जीवन में धारी, तिस अनुकूल नित स्वभाव विचार। हम किसी को कर्म करते हुए देखते हैं तो उस कर्म करने से जिस प्रकार के भी कर्म कर रहा है, यदि हमारे पास ये विज्ञान है, हमारी बुद्धि इस बात को जानती है, तो मैं उसके स्वभाव को पहचान सकता हूं, ये किस स्वभाव का व्यक्ति है। क्योंकि उसी से पता लगेगा कि ये ऐसे कर्म क्यों कर रहा है। श्री वाणी कह रही है, जैसा स्वभाव धर देह को धारे, तिस अनुकूल करे कर्म व्यवहारे। जैसा स्वभाव धारण करके वो इस देह को धारण करके संसार में आता है, जब वो बड़ा होता है तो कहते हैं तिस अनुकूल करे कर्म व्यवहारे। उसके व्यवहार से, उसके कर्मों से ये साफ पता लग जाता है कि ये पूर्व जन्म में किस स्वभाव की कमाई करके संसार में आया। इसलिए दो जहान की बात करती है कि पूर्व जन्म का संबंध मेरा वर्तमान जन्म से, और वर्तमान जन्म का संबंध भविष्य के जन्म से। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये मेरी कंटिन्यूस जीवन यात्रा है, इस देह के साथ मेरी मौत नहीं। मेरी जो रियल प्रॉपर्टी है वो मेरा स्वभाव है, और ये स्वभाव मेरी बुद्धि में बचा रहता है, सुरक्षित रहता है। इसीलिए जो मेरे भोग के संस्कार हैं, कर्मों के संस्कार हैं, वो मन में सुरक्षित रहते हैं, और ये मन और बुद्धि मेरे नई देह में ट्रांसफर हो जाती है। क्यों ट्रांसफर हो जाती है? क्योंकि इस देह की जब मौत होती है तो प्रभु इस देह में खुद मौजूद है, इसे वो मेरे इस मन और बुद्धि की रक्षा करते हैं। इसे इस जीव को जब इसका अंत आता है, इसकी देह का, तब अपनी गोदी में बिठा के रखते हैं वो, और नई देह प्रदान करते हैं, और ये मेरी प्रॉपर्टी भाव वापस करते हैं। जो मन मैंने तैयार किया, जो बुद्धि मैंने तैयार की, जो स्वभाव मैंने तैयार किया, वो नई देह में मुझको बचपन से ही जन्म लेते ही वापस मिल जाएगी। अब बताइए मैं कौन सी प्रॉपर्टी इकट्ठी करूं? क्या मैं संसारियों की नकल करके अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? क्योंकि संसारियों की नकल क्या है? जो संसारी सुख प्राप्ति के लिए जीते हैं उनके लिए दो कैटेगरी शास्त्रों में आई है, रजोगुण और तमोगुण। तो सारा संसार जो माया के पीछे भाग रहा है और उसमें उसको जीवन का लक्ष्य बनाकर उसके लिए जी रहा है, ये वो लोग हैं जिनका स्वभाव रजोगुणी और तमोगुणी। तो आप बताइए कि मेरा अगला जन्म जब मेरा स्वभाव डिसाइड करता है तो मैंने इस प्रॉपर्टी को अर्न करना है या संसारियों की नकल करके उस सुख को प्राप्त करने के लिए जीना है जो सुख दुख में बदल जाता है। इस विज्ञान को हम समझे या ना समझे लेकिन वाणी हमको सिखा रही है जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। ये विज्ञान है, ये मैंने सीखना है, ये तो गलती कर जाऊंगा। इस जन्म में भी मुझको पछताना पड़ेगा, अगले जन्म में भी मुझको पछताना पड़ेगा। जन्म कोई दूर नहीं है, इस देह की डेथ के तुरंत बाद ही नया देह प्रभु मुझको प्रदान करने है। तो मैं अज्ञानी बनकर इतनी बड़ी गलती क्यों करूं कि पूरा का पूरा जन्म मेरा बर्बाद हो जाए? वर्तमान जन्म भी बर्बाद हो, अगला जन्म भी बर्बाद हो। तो मैंने बुद्धिमान बनना है, प्रभु ने आपको बुद्धि दी, बुद्धि क्यों दी है? बुद्धिमान जो है व्यक्ति पास्ट से सीखता है और प्रेजेंट में वो संस्कार बनाता है जिससे उसका फ्यूचर सुधरता है। इसलिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये तीनों एक साथ चलते हैं, इन तीनों को मिलाकर मेरा जीवन तैयार होता है। तो मैं इस जन्म में मानव जन्म में लापरवाही कैसे कर सकता हूं? इसीलिए मनुष्य जन्म में सबसे ज्यादा यदि किसी वस्तु की कीमत है वो सदविचार की है। इसलिए वाणी करिए सत्संगत सत्कर्म अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। वो कितनी बड़ी बात है सत्संगत, क्योंकि जहां सत्संगति होगी वहीं तो सदविचार मिलेगा, वहीं मैं कैसे जीव उसकी प्रेरणा को मिलेगी। तो सत्संगत सत्कर्म अनुपा, सत्संगति से सत्कर्म मिलता है। इसलिए वो अनुपा मैंने अनोखा है, पूरे संसार में सत्कर्म एक अनोखी चीज है। क्यों अनोखी चीज है? वर्तमान जन्म को ही बनाता है, अगले जन्म को ही वो बनाता है। कहां तक ले जाता है आगे? जीव पाए निज सहज स्वरूपा, अर्थात जीव का जो अपना निज स्वरूप है जिसको ईश्वर कहते हैं, ये जीव वो ईश्वर बन जाता है। इस मानव देह में रहते रहते वो बन जाता है। तो मेरा कितना कीमती जन्म है ये, और मैं लोकाचार में आके लोगों की नकल करके कैसे बर्बाद करता हूं? जो धर्म है ही नहीं उसको धर्म समझता और संसार में झगड़े करता हूं, धर्म के लिए झगड़े करता हूं। जो धर्म शांति का स्रोत है उसके लिए मैं झगड़े करता हूं। इसलिए संसार आपको धर्म नहीं समझ सकता। यदि आपने किसी पूर्ण गुरु को पकड़ा है या पूर्ण शास्त्र को पकड़ा है वहां से आपकी बुद्धि सतगुणी बन सकती है। इसलिए आगे कह रहे हैं कि सातक कर्म से स्वभाव सातक होई, सातक स्वभाव से देव गति लगती। सातक कर्म से स्वभाव सातक। देखो एक बात तो पहली यह है कि मैं जिस स्वभाव को लेकर पैदा होता वो स्वभाव मेरे जीवन पर छाया रहता है। एक दूसरी बात भी यहां कही जा रही है, सातक कर्म से स्वभाव सातक। मां जी इसी बात को कह रहे हैं, मनुष्य यदि चाहे तो अपने स्वभाव को बदल सकता है। तो स्वभाव कैसे बदलता है, कैसे बनता है? कर्मों से स्वभाव बनता है और कर्मों से ही बदलता है। तो मैंने कौन से कर्म करो? तो कह रहे कि सातक कर्म से स्वभाव सातक। तो सतोगुणी कर्म है उसको करने से तेरा स्वभाव सतोगुणी बन जाता है। और इसका लाभ क्या मिलता है? कहते हैं कि सातक स्वभाव से देव गति लगो। ये देव गति कौन सी होती है? वो देव गति बाहर नहीं है, इस देह के अंदर। क्योंकि प्रभु का जो निज स्थान है जहां वो मेरी देह में विराजमान है उसको दसवां द्वार कहा जाता है, उसको कपाल कहा जाता है। जहां मेरी चोटी का स्थान है वो दसवें द्वार की जगह है। और मेरे लिए मस्तक है, साधना करते करते जब मेरे अंदर की प्रगति इतनी हो जाती है कि मुझको अपने अंदर नाद का अनुभव या कुंडली का अनुभव इस मस्तक में होने लगता है, तो वहां से फिर आगे की सारी यात्रा ये देव गति है। तो मैं इस मनुष्य जन्म को लेकर इस संसार में रहते हुए उस देव की यात्रा करता हूं जो मुझको प्रभु तक पहुंचा देता है। तो ये सतोगुणी कर्म का प्रभाव है। यदि मैंने शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किया, इस वाणी को समझने की कोशिश ही नहीं करी, इस विज्ञान को सीखने की कोशिश ही नहीं करी, खाली वाणी को पढ़ता ही रहा, तो मैं कैसे प्रगति करूंगा? आपके संसार में कुछ भी बनना होता है कितनी मेहनत करते हो। जीवन में सफल होने के लिए चाहे बिजनेस हो चाहे सर्विस हो आप कितनी तगड़ी मेहनत करते हो, लगभग पूरा जन्म लगा देते हो, तब कहीं आपको दिल को संतुष्ट होती है कि हाँ मैंने अपना जो चाहता था वो मैंने कर लिया। इसीलिए वो कहते हैं कि सातक कर्म से स्वभाव सातक हुई, सातक स्वभाव से देव गति लग गई। ये सतगुण स्वभाव को कहाँ ले जाता है? ये आपको अंदर ईश्वर की ओर ले जाता है, उसी को देव गति कहते हैं। और एक दिन आपको स्वयं ये ईश्वर बना देगा, वहां तेरी गति पूर्ण हो जाती है, जन्म मरण से तू मुक्त। इसीलिए मनुष्य जन्म लेकर मैंने सतोगुणी कर्म क्या होते हैं कैसे करने होते हैं ये मैंने सीखना होगा। आगे कहते हैं राजस कर्म से स्वभाव राजस पावे, राजस स्वभाव मंद गति दिखावे। राजस कर्म जितने भी सांसारिक कर्म हैं जो हम सुख प्राप्ति के लिए करते हैं ये सारे के सारे रजोगुणी कर्म के अंतर्गत आते हैं। और रजोगुणी कर्म क्या होते हैं? सुख कैसे भोगते हो आप? इंद्रियों के बल पर सुख भोगते हो। हमारी जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, तो पांचों ज्ञान के द्वारा जो इस देह में स्थित है मैं सुख भोगता हूं, सुख का अनुभव करता हूं। तो आप बताइए कि राजस स्वभाव मंद गति दिखा दे, यदि आपने इंद्रियों के द्वारा सुख भोग भोगे उसके लिए कमाई करी उसको इकट्ठे किए तो क्या होगा कि आपकी मंद गति हो जाएगी। मन गति किसको कहते हैं? कि मनुष्य जन्म यदि मिला भी तो ऐसे परिस्थिति में मिलेगा जहां आप रजोगुणी से तमोगुणी बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। भोगवादी जो बुद्धि है वो गलती करने को मजबूर हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया में सबसे बड़े बेईमान वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा अमीर है। एक गरीब तो 10 रुपए की बेईमानी कर लेगा, 20 रुपए कर लेगा, वो लाखों करोड़ हजारों करोड़ की बेईमानियां करते हैं और फिर भी हम उनको बड़ा आदमी कहते हैं। तो प्रकृति नहीं छोड़ती, ईश्वर उनको नहीं छोड़ता। इंसानों को वो धोखा दे सकते हैं लेकिन अपने अंतर्यामी ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए कमाई करने में भी ऐसी कमाई करने में उनका पूरा जन्म लग जाता है और उनकी मानसिक बेचैनी को आप क्योंकि जानते नहीं हो, इस विज्ञान का आपका कोई निर्णय नहीं है बुद्धि में, इसलिए आप उनके जीवन को सफल जीवन करके देखते हैं क्योंकि पूरी तरह से विफल जीवन है। यदि विफल जीवन नहीं होता तो उनका जो अगला जन्म है दूसरा जहान है वो मंद गति क्यों दिखाता है? अर्थात लगातार वो पतन कर रहा है तो अगला जन्म उस पतित हालत में होगा और फर्दर आगे और पतन होगा। और कहां पहुंचाएगा उसको? तीसरी जगह पहुंचा देगा, तामस कर्म से स्वभाव तामस होई, तामस स्वभाव नीच गति फिर होई। तो दूसरों को जो दुख देता है अपने सुख प्राप्ति के लिए वो तामसी स्वभाव होगा और ये क्या करता है? नीच गति में ले जाता है। अगला जन्म आपको पशु पक्षी की योनि में मिलेगा जहां प्रगति की कोई आपकी संभावना बचती ही नहीं, ये नीच गति। तो यदि मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को नहीं देखा और इसे अध्यात्म विद्या को मैंने नहीं सीखा तो मुझको वर्तमान जन्म भी किस परिस्थिति में मिला है, जैसा मैं आज हूं, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा ये मेरा पास्ट डिसाइड करता, लेकिन भविष्य मैं डिसाइड करता हूं। भविष्य में मैं क्या बनना चाहता हूं। तो वर्तमान जन्म को देखकर मैंने सत्पुरुषों के साहित्य को पढ़कर, वाणी को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर मैंने ये स्वभाव का विज्ञान सीखना है कि मैंने मनुष्य जन्म लेकर सतोगुणी बनना है। सतोगुणी बनने के लिए क्या कर्म करने होते हैं, सादे रूप में बात कही जाए तो सतोगुणी जो व्यक्ति होता है उसके भाव जो अंदर होते हैं परोपकारी भाव, उसको दूसरे का दुख दिखाई पड़ता है, इसलिए जो भी सामर्थ्य उसकी है दूसरे का दुख दूर करने की कोशिश करता है। ये परोपकारी भाव होता है, इसके लिए उसके सामाजिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में परोपकार आपको साफ नजर आएगा। और दूसरी क्या होती है, परोपकारी सीखेगा से सदविचार से सीखेगा, इसलिए उसकी सत्संगति भी होगी, उसका कोई गुरु भी होगा, पूर्ण गुरु होगा, बाजारू गुरु नहीं होगा। तो वास्तव में माझी कहते प्रेमी पूर्ण गुरु की एक ही पहचान है, उसके अंदर एक भी इच्छा बाकी बचती ही नहीं है, वो निर्वास होता है। इसलिए ना वो सिंहासन बनाएगा, ना वो कीमती कपड़े पहनेगा, ना कोई साजो सामान होगा, ना उसके पास कोई सुरक्षा के साधन होंगे। जिसकी सुरक्षा ईश्वर कर रहा है, ईश्वर खुद है, वो कौन सुरक्षा करेगा उसे। तो विचार से देखो तो नकली गुरु असली गुरु की तो बड़ी सीधी सी पहचान है, कोई गहरी बात की कोई जरूरत नहीं, वो निर्वास होता है। इसीलिए ऐसे गुरु के सत्संग को, ऐसे गुरु की संगत को या उसके शास्त्र को ये मनुष्य पढ़ने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, ताकि वो इस तमोगुण और रजोगुण से बच सके और सतोगुणी संस्कार अपने जीवन में बना सके। और ये जब संस्कार बनेंगे तो फिर कहते हैं कि जैसा स्वभाव धर देह को धारे तिस अनुकूल करे कर्म व्यवहारे। जब मैं सतोगुणी स्वभाव धारण करके मेरा अगला जहान तैयार होगा, अगला जन्म तैयार होगा, उसमें से क्या होगा, तिस अनुकूल करे कर्म व्यवहार। तो जिस प्रकार महाराज जी का जन्म हुआ और उन्होंने उस जन्म में क्या किया, क्या प्राप्त प्रभु ने दिया, सब जानते हैं। केवल उन्होंने लोक कल्याण के लिए कार्य किया, अपने अंदर तो कोई इच्छा थी ही नहीं, और प्रभु ने उनको बोलकर बताया अपने अंदर ही कि तुझको लोगों को दुख देने के लिए नहीं भेजा गया है, जो अज्ञानी जी ने उनके मार्गदर्शन के लिए तुझको भेजा गया है, इसलिए पहले अपनी कमी पूरी कर, फिर तुमने ये कार्य कर। तो देखिए कि प्रभु जो अंतर्यामी है मेरा अंदर से मार्गदर्शन भी करते हैं। मैं जो सतगुणी जीव हूं तो मेरा प्रभु से डायरेक्ट संबंध बना रहता है, वो मुझको बोलकर भी समझा सकते हैं, किसी के द्वारा भी समझा सकते हैं, क्योंकि वो मेरे कल्याण की सोचते हैं और मेरा कल्याण करते हैं। इसलिए मैंने वर्तमान जन्म के साथ अगले जन्म की भी सोचनी है, इसलिए वाणी कह रही है कि कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटने पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। तो कामना का जो बिंद है वो क्या है, कर्म का बिंद है, बीज है क्या है, वो स्वभाव। तो जैसा स्वभाव बनाकर मैं जाऊंगा वैसे ही अगला जन्म मिलेगा और वैसी मेरी उन्नति होगी या अवनति होगी। इसलिए मेरी जन्म बड़ी होशियारी से, बड़ी ही बुद्धिमानी से गति करने की जरूरत है। इसमें मनुष्य को दूरदर्शी होना ही चाहिए, इतना दूरदर्शी इस जन्म की ही नहीं अगले जन्म की भी, इस जन्म में से। इसलिए मन जन्म दूरदर्शी होना चाहिए ताकि आप कहीं गलती ना हो। धन्यवाद।